हिंदी फिल्मों के गीतों में वेस्टर्न म्यूजिक का प्रभाव आरडी बर्मन साहब के समय से ज्यादा दिखने लगा था। कल्याण जी, आनंद जी और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने भी ये दखल बढ़ाया था, पर बप्पी लहरी तो पूरी तरह से उस रंग में रंगे थे। पॉप स्टार की तरह गेटअप रखने वाले हमारे बप्पी दा ने बॉलीवुड गीतों को वेस्टर्न पॉप म्यूजिक का ऐसा तड़का लगाया कि 80 के दशक में संगीत सुनने वालों को एक नया स्वाद मिला। यह एक समय था जब बप्पी लहरी का नाम आते ही लोगों के जहन में झूमते हुए गाने और कई डांस नंबर आ जाते थे। बप्पी लहरी की बात हो और उनकी स्टाइल पर नजर न जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बप्पी दा हमेशा रॉक स्टार के लुक में नजर आते थे। उनके पहनावे में अधिकतर ट्रैक सूट या कुर्ता पैजामा होता था। इसके साथ ही बप्पी दा अपने धूप के चश्मे को गर्मी हो या सर्दी कभी नहीं छोड़ते थे। दादा, आप सदैव हम सबके दिलों में हैं और हमेशा रहेंगे।
कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना।
हेलो दोस्तों, मैं दिव्यांशु कक्कड़ लेकर आया हूँ आप सबका फेवरेट शो क्रेजी फॉर सोनू।
कैसे मैं कहूँ तुझसे, रहना है तेरे दिल में।
दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि हमारे सोनू जी कैसे इंस्पायर हुए हमारे लेजेंडरी सिंगर से, चाहे वो रफ़ी साहब हों या किशोर दा हों या मुकेश जी हों या हेमंत कुमार जी हों या महेंद्र कपूर जी हों या जितने भी आइकॉनिक सिंगर्स हुए हमारे आज तक। यूं तो हम सभी जानते हैं कि रफ़ी साहब इज़ द म्यूजिकल फादर ऑफ सोनू निगम। सोनू जी कहते हैं कि अगर रफ़ी साहब ना होते तो सोनू निगम जो आज है वो उसका आधा भी ना होता। उनकी जो पूरी ग्रूमिंग अप है वो रफ़ी साहब के गानों को सुनकर ही हुई है, और इसका एक कारण भी है। एक्चुअली सोनू जी कहते हैं कि उनमें एक खूबी है कि वो पकड़ लेते हैं बहुत जल्दी हर चीज़ को, कि ये आदमी कैसे गा रहा है, ये ऐसे भी गा सकता है और ये आदमी वैसे भी गा सकता है। तो सोनू जी को रफ़ी साहब का कोर समझ में आ गया था, जैसे कि देयर इज़ अ ब्यूटीफुल सॉन्ग ऑफ रफ़ी साहब, तू मेरे सामने है, तेरी जुल्फें हैं खुली, तेरा आंचल है ढला, अब ढला। ये भी गा सकते हैं, पर रफ़ी साहब ने क्या गाया है, तेरा आंचल है ढला ढला, ये भी हो सकता है, पर गाना खत्म हो जाएगा आपका वहीं पे। तेरा आंचल है ढला, मैं भला होश में, ये भी हो सकता है, पर मैं भला होश में कैसे रहूं, कि गा के बताया है कि कैसे रहूं मैं होश में, कैसे रहूं, कितनी भी हरकत मार लो कैसे रहूं, अगर आपने कहे कि नहीं दिखाया गाने में, देन यू आर नॉट अ सिंगर। और ऐसे ही सारे सिंगर्स को उन्होंने इतना सुना है कि अगर वो एक कोई भी गाना, छह सिंगर्स कैसे गाएंगे ये हैंड टू हैंड बता सकते हैं। कि सपोज ये एक गाना है, अगर तो इसे तलत महमूद जी गाएंगे तो कैसे गाएंगे, या हेमंत कुमार जी कैसे गाएंगे, या महेंद्र कपूर जी कैसे गाएंगे, या किशोर दा कैसे गाएंगे, या रफ़ी साहब कैसे गाएंगे, या मुकेश जी कैसे गाएंगे, इवन जो हमारे 90s में सिंगर्स थे कि शानू दा कैसे गाएंगे, उदित जी कैसे गाएंगे, या एसपी बालाजी कैसे गाएंगे। तो इट्स अ स्टडी ऑन सिंगर्स, ये उन्होंने बहुत करी हुई है, और शायद यही कारण है कि आज ही कैन सिंग एनी सॉन्ग विदाउट एनी फ्लॉज। सोनू जी कहते हैं कि सबसे ज़्यादा उन्होंने जो सीखा है वो रफ़ी साहब के कवर वर्जन से सीखा है, क्योंकि इतने अलग अलग तरीके के गाने जो गाने को मिले हैं रफ़ी साहब के, कि गा के समझ में आया कि किस गाने को कैसे परोसना है। वी नीड टू सर्व इट जब सोनू जी रफ़ी साहब की वर्जन्स गा रहे थे तो वो ऐसे ही नहीं गा देते थे कि सुन लिया और हो गया। टी सीरीज़ में एक टेप रिकॉर्डर होता था उस समय, तो वो सोनू जी क्या करते थे कि जो भी गाना है उसका एक मुखड़ा लिखते थे और उसकी मार्किंग करते थे फिर कि यहाँ गाने में सांस लेनी है, यहाँ सांस नहीं लेनी है, यहाँ कर्व आएगा, इस मुखड़े की जो पहली लाइन है इसमें ये हरकत है और उसी मुखड़े की जो सेकंड लाइन है उसमें दूसरी हरकत है। तो इतनी डिटेल्ड मार्किंग करते थे, मतलब इतना ध्यान दिया उन्होंने। एक वो गाना है, बहुत ही प्यारा गाना है रफ़ी साहब का, तेरे नाम का दीवाना, ये हरकत हो गई। अब जो इसी का इसी मुखड़े की जो दूसरी लाइन है फिर से, तेरे नाम का दीवाना तेरे घर को ढूंढता है, मतलब इतना ध्यान दिया है उन्होंने और इतने प्यारे गाए हैं सारे वर्जन्स कि मतलब लाजवाब। सोनू जी कहते हैं कि कभी कभी मैं सोचता हूँ कि काश कभी मुलाकात हुई होती रफ़ी साहब से तो ज़िंदगी सवर जाती। फिर कहते हैं कि और कितना मिलूँगा अब मैं, इससे ज़्यादा क्या ही मिल सकता है कोई किसी से, इतना तो मैं खुद से नहीं मिला जितना रफ़ी साहब से मिला हूँ। और अब हुआ है मेरे जाने का वक्त, और जाते जाते सोनू जी रफ़ी साहब से बस यही कहना चाहेंगे,
अब है सामने इसे छू लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा।